فرمائے وما علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہ علیما. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت بری رفاقت میسر آ گئی، آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ لوگ اللہ روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے. یعنی یہاں تک جو بات ہے نا، اس میں خلاصہ کیا، کیوں لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ اللہ کو دکھائیں، اللہ خود ہی لوگوں کو دکھا دے گا. اب قیامت کے میدان میں آپ کو مجھے لے جایا جا رہا ہے. اور سورۃ نساء کی یہ آیتیں اور اس سے آگے بھی کچھ آئیں گی جو اللہ کے نبی کو دکھی کر دیتی تھی، کیونکہ ہر انسان جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اس کو اپنے اعمال کی گواہی دینی پڑے گی. کیا پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کر دیں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے. کس کی بات مانتے ہیں ہم شادیوں میں؟ کس کی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم شادیوں میں؟ ہماری خوشیوں میں کس کے قانون ٹوٹتے ہیں؟ کس کی سنتوں کی دھجیاں بکھیرتے ہیں؟ اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں. قیامت کے دن وہ لوگ جو خوشیوں میں سنتوں کو بھول کر نافرمانیوں میں پڑھتے تھے وہ کیا کہیں گے؟ بلکہ اس میں ہمارے اردو کا ایک بڑا محاورہ بھی ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا. لو تو سوا بہم الارض، کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں. کب بولتے ہیں ہم پاکستانی لوگ؟ جب بے عزتی کی حد ہو، شرمندگی کی انتہا ہو. کہتے ہیں اس وقت کو دیکھنے سے بہتر تھا کہ میں زمین میں گر جاتی. اور ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. ذرا امیجن کریں، آپ سب ایک دوسرے سے بے نیاز ہو، آنکھیں بند کریں چند سیکنڈ کے لیے. قیامت کا دن ہے اور ہماری مستیاں اور ہمارے دکھاوے اور ہماری بے دینیاں، ہماری بے حیائیاں کھول کھول کے دکھائی جا رہی ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ یہ وقت گزر جائے، اللہ گھڑی کیوں رک گئی، اللہ کیا بنے گا، اللہ اس وقت یہ لوگ کیوں ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں. ایسے وقت میں ایک انسان واقعی کہے گا کہ یہ ساری مستیاں گئیں. آپ دیکھیے کہ کوئی بندہ بہت جھوٹی شان و شوکت دکھا رہا ہو، اتنے میں پولیس مین آ جائے اور ہتھ کڑیاں ڈال دے اور کہہ دے یہ سب ناجائز ہے، انہوں نے تو ہم سے اجازت بھی نہیں لی یہ کام کر لیا، یہ تو چوری کر کے آئے اور یہ پیسے ادھر لوٹانے لگ گئے، کیا عزت رہے گی مہمانوں کے سامنے. زندگی میں جب کبھی گناہ کرنے کو دل کرے تو یہ باتیں یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کہیں میں اللہ تعالیٰ کو شکل دکھانے سے بھی دور نہ ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج دنیا میں اپنی اصلاح کی توفیق دے. اس کے بعد بہت ہی خوبصورت آیت ہے نماز کے بارے میں، اس میں ایک بہت بڑا حکم ہے. آئیے پڑھتے ہیں آیت 43. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. یہ کیا بات ہو گئی؟ اچھا جی، ویسے نشہ کر سکتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے. تو نوٹ کیجئے گا، شراب کی حرمت میں ایک آیت ہم پیچھے الحمدللہ پڑھ چکے سورۃ بقرہ میں، اب یہ دوسری آیت آ گئی. شراب عربوں کی گھٹی میں پانی کی طرح پڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اشارے دینے شروع کر دیے تھے مکہ میں ہی، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کچھ لوگوں نے چھوڑ دی. خیر ہوتے ہوتے یہ وقت آ گیا کہ لوگ پیتے کوئی نہ پیتے. ایک ایسا موقع تھا کہ کسی محفل میں مسلمان تھے، صحابہ ہی تھے ظاہر ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ کے حکم پہ انہوں نے کیا کیا چھوڑا. اب کیا ہوا کہ شراب پی اور ساتھ ہی نماز کا وقت ہو گیا، تو جو یہ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو شراب کے نشے میں انہوں نے کچھ لفظ بدل دیے. یہ کہنے کی بجائے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی تم کرتے ہو، یہ کہہ دیا ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. اب یہ تو بڑا ایشو بن گیا. تو یہ آیت اتر گئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو. یہاں سے دو تین باتیں بہت ہی شعور دلانے والی ہیں میرے آپ کو. پہلی بات ہے کہ وہ شراب کے نشے میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. ہم تو شادیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، چار مہمان گھر میں آ جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں، چار گروسری کی چیزیں آ جائے اس کو سمیٹنے میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، اسکول کالج میں ذرا سا ٹائم زیادہ لگ جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو ارے نماز چلی گئی. پہلی بات. دوسری بات دیکھیے گا کہ اس میں بہت اہم ہے کہ جو پڑھ رہے ہو اس کو سمجھو. क्या इल्लत है। अभी शराब को छोड़ दीजिए, उस पर हम बात नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह में से कोई शराब पी के नहीं नमाज़ पढ़ता, लेकिन नोट कीजिएगा कि शराब में भी वो जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं। और अगली बात देखिए कि नमाज़ पढ़ने के दौरान समझो इल्लत क्या है, रीज़न क्या है, कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुमने क्या पढ़ा। तो आप और मैं ज़रा फिर आंखें बंद करके ख़ुद से एक सवाल तो करें। अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तक जो कुछ नमाज में पढ़ा, 3 रकत, 4 रकत में या 2 में, सारे पे तवज्जो थी, फोकस्ड थी। हदीस में आता है कि तुम्हारी नमाज का सिर्फ उतना हिस्सा कबूल है जिसमें तुम्हारा दिल हाजिर हो। तो इस आयत को नोट कर लीजिए, नमाज के तर्जमे को समझना है। नमाज पे गौर व फिक्र कीजिए, नमाज मेरी आपकी ज़िंदगी की रूह है, हमारे अल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद और इसका पोल इस नमाज की सूरत में खुलता है। तो अपनी नमाजों के पीछे लग जाएं हम और आप, और यहाँ बैठ कर इस इल्म की महफिल में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी नमाजों को दुरुस्त कर दे। हर दिन कुछ करें, अभी भी कुछ दिन हैं आपके पास मेरे, रमज़ान से पहले एक बार अपनी नमाज ठीक कर लें, तलफ़ुज़ ठीक कर लें, उसके अंदर कुछ नई सूरतें ऐड कर लें ताकि हमें समझ आए। और इसके इंशाल्लाह जब हम कोशिश करेंगे अल्लाह ताला आसान करेंगे। इससे ये भी पता चलता है कि नमाज़ अल्लाह की याद के लिए पढ़नी चाहिए, जानबूझ के नमाज़ नहीं छोड़नी, छोड़ दी तो फ़ायदा नहीं होगा। फिर इसके बाद आप देखिए अब आगे कुछ जुनाबत के मसाइल है, यानी दीन, दीन फितरत भी है, पाकीज़गी का दीन है। इंसान पर कुछ ऐसी हालतें आती हैं जिसमें वो नमाज़ और कुरान की तरफ नहीं आता, उसी का इशारा है। फरमाया वला जुनुबन इल्ला बिरिस सबील इन खत्ता तख्तसिलो। और इसी तरह जुनाबत की हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि गुसल ना कर लो, इल्ला ये कि रास्ते से गुजरते हो। अगर कभी तुम बीमार हो या सफ़र में हो, या तुम में से कोई शख्स रफ़ा हाजत करके आए, या तुमने औरतों से लम्स किया हो फिर पानी ना मिले, तो पाक मट्टी से काम लो और इससे अपने चेहरों और हाथों पर मसह कर लो, बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शिश फरमाने वाला है। आप देखिए इसमें पाकीज़गी और तहारत की बातें हैं, तो साथ ही इसमें तयम्मुम की बात है। आम हालात में हुक्म क्या है कि एक नाहून के बराबर जगह खाली रह गई तो आपको वज़ू नहीं होगा, इसलिए नेल पॉलिश लगी हुई है, आपने वज़ू किया नमाज़ नहीं होगी, आपने गुसल किया आप पाक नहीं होंगी। पहले उतार के फिर लगा लें, गुसल करने के बाद लगाएं। किसी को बहुत शौक है नेल पॉलिश का और उसमें कोई हराम इंग्रेडिएंट्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप लगा सकते हैं। शर्त क्या है, वुज़ू करने के बाद लगाएंगे और वुज़ू टूटने से पहले जितनी नमाज़ें पढ़ें इट्स ओके, लेकिन अगर अगली नमाज से पहले वुज़ू टूटा तो पहले नेल पॉलिश को रिमूव करेंगे फिर उसको लगाएंगे। ये तो आम हालात की बात है ना। इसी तरह नेल पॉलिश की तरह हाथ में गम लग चुका है, कभी एल्फी लग गई, कभी कोई स्टिकी चीज़ लग गई, कोशिश कीजिए कि उसको उतार दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ तयम्मुम की बात है, उधर एक नाहून बराबर जगह सूखी रही तो वज़ू नहीं हुआ, और इधर एक कतरा पानी नहीं छुआ और वज़ू हो गया, क्या वज़ू छोड़िए गुसल हो गया। ये है नदीन और यसर, हालात और मवाक़े के मुताबिक अहकामात बदल जाते हैं, अल्लाह ताला आपको मुझे ये सब कुछ बताते हैं। अब अगली आयतों में फिर इशारा अहले किताब की कुछ आदात की तरफ है, आइए सुनते हैं। अलम तर इल्लज़ीना उतु नसीबा मिनल किताब यश्तरून अद्दलालता। तुमने इन लोगों को भी देखा जिनको किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया, यहूदी उलमा की तरफ इशारा है, नोट कीजिए, पूरा दीन नहीं मिला इनको, या तो पूरा मिला था लेकिन इन्होंने पिक एंड चूज़ के साथ अपनी मर्ज़ी का दीन लिया। वो खुद जलालत के ख़रीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह गुम कर दो। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। वकफ़ा बिल्लाहि वलिया, और तुम्हारी हिमायत व मददगार के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जो लोग यहूदी बन गए, इस जुमले को नोट करें, अल्लाह ने लफ्ज़ यहूदी इनको नहीं दिया था, अल्लाह ने इनको क्या बोला, आप सब बोले मुस्लिम, लेकिन इन्होंने फ़िरका वाराना सेक्टेरियन नेम क्या रख लिया, यहूदी। उनमें से कुछ लोग हैं जो अल्फाज को इनकी जगह से फेर देते हैं और दीन हक़ के ख़िलाफ़ निशनी करने के लिए अपनी ज़ुबानों को तोड़ मोड़ कर कहते हैं समेना व असईना इसम गैर मुसमैन व रायना। हालांकि अगर वो ये कहते कि समेना व ताना और इसमा और उनजुरना तो ये इनके हक़ में बहुत बेहतर होता और ज़्यादा रास्तबाजी का तरीका था, मगर इन पर तो इनकी बातिल परस्ती की बदौलत अल्लाह की फटकार पड़ी हुई है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। क्या पता चला कि जब अल्लाह के दीन को पढ़ाते और बताते वक्त वो बातें जिनको सुनकर लोग नाराज़ हो जाते हैं और बकौल लोगों के इन बातों को सुनकर भी लोग सुनने नहीं आते, उसको मोड़ना नहीं चाहिए। बस इस वक्त मैं आपके सामने कुरान पेश कर रही हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सिर्फ अमली नुक्तों को आपके साथ हाईलाइट करूं। वक्त की अहमियत से अब सामने एक हुक्म आ जाता है जो आपके मेरे अमल का है, और मैं कहूं नहीं आना ना छोड़ दें, हो सकता है आज इन्होंने पहली दफ़ा कुरान सुना है, अभी इनकी उम्र बड़ी छोटी है, चलो मैं इस मौजू को स्किप कर दूँ तो ये मेरी ख़यानत होगी। फ़र्ज़ है तो मैं इसको कह दी इट्स ओके कर लें तो ख़यानत होगी। बहुत शिद्दत है एक हुक्म की, मैं उसको डेलीकेट करके डाइल्यूट कर दूँ, मेरी ज़्यादती होगी। इसी तरह अपोज़िट भी है, अभी मैंने आपको कहा आप नेल पॉलिश लगा लें, ये मेरा इंसाफ है, और मैं आती जोश में कहती नेल पॉलिश लगाने वाली उंगलियाँ क़यामत के दिन जहन्नुम में जाएंगी, ये भी ज़्यादती है। जब दीन के नाम पे आप ये कहते हैं कि औरतों ने अगर अपने चेहरे पे रंग लगा लिया तो होंठ आग में जाएंगे, ये ज़्यादती है आपकी। आज दीन की तबलीग में ये कमी पेशियाँ कर दी गई। रूम टेम्परेचर पे दीन दीजिए लोगों को, मेरा आपका मसला नहीं है, ना मैंने किसी की जन्नत लेनी ना किसी को जहन्नुम में भेजना, तो अपने ऊपर क्यों बात लेते हैं। और यकीन करें अल्लाह के दीन में हर जज्बे की तस्कीन पूरी करने का हक है। आप जब लोगों को दीन का टेम्परेचर या रेशियो प्रोपोर्शन बदल के देते हैं ना, तो फिर उससे वो होता है जो आज हुआ है। मसलन आप देखिए को केक बनाता है, वो कहते हैं इसको 250 पे 45 मिनट तक बेक कीजिए, मिसाल दे देती हूँ, ठीक है। आप कहते नहीं ऐसा करें कि आप 240 पे रहने दीजिए, आप 120 टेम्परेचर रखें और 1.5 घंटा इसको ओवन में रख दें, केक बनेगा, फूलेगा, सॉफ्ट होगा, वो केक नहीं वो केक रस बन जाएंगे क्योंकि आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया। ये वजह है कि आज लोगों को अल्लाह की मर्ज़ी समझ ही नहीं आती, फिर लोगों की बातें, उलमा की बातें, उनके फतवे। तो मुझे आपको इसका हक नहीं है कि हम लोगों के और अल्लाह के कुरान के बीच में आएँ, और अगर कभी कोई बात मैंने अपनी एग्जैजरेशन से कह दी तो अल्लाह वो सबके जहनों से ही निकाल दे। मैं तो ये दुआ करूँगी जब यहाँ बैठती हूँ, मैं अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करती हूँ कि अल्लाह मेरा कोई जज्बाती जज्बा, कोई ग्राज, कोई मेरी पसंद ना पसंद ना आ जाए जो तेरे कलाम में तूने रुख्सतें दी हैं मैं लोगों को बताऊँ, और जो पकड़ है जो सख्ती है मैं उसमें झूठी तसल्लियाँ ना दे के आ जाऊँ कि चलो ये लोग क्या कहेंगे, और आज तो सारी सोसाइटी ये कुछ कर कर आ रही है। अल्लाह ताला हम सबको हक बात पे जमा दे। फिर फरमाए वो लोगों जिनको किताब दी गई मान लो इस किताब को जो हमने अब नाजिल की है। आप ज़रा यहाँ मोहब्बत को तो महसूस करें, मान लो ना, क्यों नहीं मानते, बार बार पूरी सूरत बकरा में दावत थी, अब इसमें भी दीजिए, मानते क्यों नहीं हो? ऐसे लगता है अल्लाह ताला आग में नहीं डालना चाहते, अल्लाह इनको मखदूब नहीं कहना चाहते, लेकिन उनको खुद शौक था। और वो इस किताब की तस्दीक और तायद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, इस पर ईमान ले आओ कबल इसके कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे कर दें या फिर इनको लानत सदा कर दें जिस तरह हफ्ते वालों के साथ हमने किया था। याद रखो कि अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहता है और अल्लाह बस शिर्क को ही माफ़ नहीं करता, इसके माँ सिवा दूसरे जिस कदर गुना है वो जिसके लिए चाहता है माफ़ कर देता है। और अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया तो इसने तो बहुत बड़ा झूठ बांधा और बड़े सख्त की बात की। तो अब इसका ये मतलब है कि बस शिर्क ना करें बाकी गुनाह करें, ये मतलब है इस आयत का? नहीं, जो अल्लाह को मान गया ना, जिसने वाकई अल्लाह की शान को पा लिया, वो दूसरे गुनाह को देख भी नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे है जब आपके दिल में किसी का रोब आता है ना, तो आप उसके रोब में आकर उसकी नाफरमानी का सोच भी नहीं सकते। हमारा हर गुनाह इस बात की दलील है कि अल्लाह को नहीं सही समझा। इसीलिए अब आगे कुछ और बनी इसराइल की ख्यानतों की बात है। इनमें जादू टूने का बहुत रिवाज था, पमिस्ट्री, हाथ दिखाना, सितारों का असर, किस्मत का हाल मालूम कीजिए, आपके स्टार मेरे से मिलते हैं और लिब्रा जो है उसका फलां के साथ जोड़ है और विरगो उससे मिलता जुलता है। आज आपको तो लोगों ने शादियों के लिए ये जोड़ देखने शुरू कर दिए, लड़का चाहिए लेकिन इस स्टार का, लड़की चाहिए उस स्टार की, पहले ही रिश्ते नहीं होते अब आप स्टार्स ढूंढने शुरू कर दें। कोई कहता है पहले इनका ब्लड टेस्ट कर लो, ब्लड टेस्ट मिलता नहीं तो आप कीजिए जो करना है, जो नतायज है वो सारी दुनिया देख रही है। तो ऐसी तमाम चीज़ों का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तर इल्लज़ीन युज़क्कून अनफुसहुम, तुमने इन लोगों को भी देखा जो बहुत अपनी पाकीज़गी नफ्स का दम भरते हैं, हालांकि पाकीज़गी तो अल्लाह ही जिसे चाहता है अता करता है, और इन्हें जो पाकीज़गी नहीं मिलती तो दर हकीकत इन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाता। देखो तो सही, ये अल्लाह पर झूठे इफ्तरा घड़ने से भी नहीं चूकते, और इनके सरीहन गुनाहगार होने के लिए यही एक गुनाह काफ़ी है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा? अंदाज़ देखिए, नाम नहीं अल्लाह ताला बताते। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है कि मिंबर पे खड़े होकर दूसरे मसलक के उलमा के नाम ले लेकर उनको शर्मिंदा करो। बस ढकी छुपी बात कर दी, क्या جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہے، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جن پر اللہ لعنت کر دے تو پھر اس کا تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ یہ انسانوں کا مزاج۔ آپ دیکھیے کہ اگر بارش انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی، اب تک بارش پہ ٹیکس لگ چکا ہوتا، ہوا انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو ہوا کے سر چارجز آ رہے ہوتے، اور آپ کی ہوا بند کر دی گئی کیونکہ بل نہیں دیا۔ سوچیے ذرا، کتنی ہوا لیتے ہم، کتنی بارش، کتنا پانی، کیا کچھ ہے، اللہ نہیں روکتا۔ کافر کا دم گھٹ جاتا ہے، ایک دم گناہ کرتا، اچھو لگ جاتا، کھانا پیٹ میں جانے کی بجائے لنگز میں چلا جاتا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کھلا صرف ہے، صبور ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو شکر کرو میں نے یہ خزانے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ پھر کیا وہ یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو ان کو معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، ذرا اس پہ چند سیکنڈ غور کریں، سب کو بھول جائیں، نہ ادھر نہ ادھر، اپنا نام لکھیں کہیں میں اللہ کی آیات کو تو نہیں ماننے سے انکار کرتی، اور اگر کسی نے کیا تو انہیں بال یقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو ان کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ آج ہم کتنے کیئرفل ہوتے ہیں، سکن کی کتنی قسم کی کاسمیٹکس باہر ملتی ہیں، یہ سن سکرین ہے، یہ موئسچرائزر ہے، یہ کنسیلر ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ فیشیل ہے، یہ وہ ہیں۔ قیامت کے دن کھالیں گلیں گی، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کھالوں کے جلنے کا عمل اور بعد میں اس کو بدلنے کا عمل دن میں 70,000 بار ہوگا۔ آج ڈاکٹرز نے یہ چیز ثابت کر دی کہ جب کوئی جلتا ہے نا تو سارا درد جو ہے نا وہ سکن کے جلنے کے دوران ہوتا ہے، ایک دفعہ سکن جل جائے نا تو ہڈیوں کے جلنے کی درد کوئی نہیں ہوتی۔ اب سکن جل گئی، درد ختم، اللہ کہتا ہے دوبارہ اس کھال کو جلاؤ۔ اب یہ گوری چمڑی، یہ کھال، یہی تو آج ہم سے سنبھلتی نہیں ہے، تو ہمیشہ اپنی سکن کے بارے میں کیئرفل رہے۔ یہ پہلا موقع ہے، آپ اینڈ تک پڑھتے جائیں، اتنا کچھ سکنز کے بارے میں قرآن میں آئے گا کہ قیامت کے دن یہ کھالیں بولیں گی۔ سورۃ حمیم سجدہ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ جسم کی کھال بولے گی، یہ انسان کے خلاف گواہیاں دے گی، اور انسان وہاں اس سے پریشان ہوگا کہ تم آج کیوں بول رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج ہی اللہ کے حکموں پہ رہیں۔ آج اس کو چھپانا پڑے کتنا مشکل لگتا ہے، چھوٹا سا ایک چہرے کا ٹکڑا ہے، خالی تو ہے، گوشت ہی تو ہے، کیا ہم بہت حسین ہے کہ ہم چھپائے نہیں، چھپ نہیں پا رہے؟ یہ جسم میں یہ گوشت کا پہاڑ ہے جس کو ہم ٹائٹ کپڑوں میں اور نمایاں کر دیتے ہیں۔ کیا میں اور آپ اس جسم کو آگ میں جلتا دیکھ سکتے؟ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آگ سے بچا دے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے، تجریم ان تحتیہا الانہار۔ اللہ کو پتہ میری نازک سی بندیاں ڈر گئی ہیں، تو ساتھ ہی جنت کی خوشخبریاں کہ ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ کتنا پیارا دین ہے، جیسے ماں پہلے بچے کو ڈانٹتی ہے، پھر دیکھتی ہے بچہ سہم گیا نا تو فوراً سینے سے لگاتی ہے، میرا بچہ، وہ نئی نئی آنسو نہیں میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتی۔ یقین کریں اللہ کو آپ سے میرے سے بہت پیار ہے، اتنا پیار ہے اس کو آپ سے مجھ سے کہ جتنا ہمیں خود سے بھی پیار نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ کو کیا پیار ہوگا، ماں باپ تو کئی غلط فیصلے کر دیتے ہیں محبت کے مار میں، لیکن اللہ کو مجھ سے آپ سے بہت پیار ہے۔ اب ایک بڑا یونیورسل حکم ہے جو واقعی دین اسلام کے مزاج کو ثابت کرتا ہے، کیا؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا و اذا حکمتم بین الناس۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ دوسروں کی چیزوں کو واپس کر دینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، आप भी याद कर लीजिए, रमज़ान के आने से पहले दूसरों के बर्तन वापस कर दें, दूसरों से कोई चीज़ ली थी दी थी, हम कहते ज़रा देना बस एक दिन के लिए, फिर कहते वो भूल गई थी। तो याद रखिए ये बहुत बेकायदगी की बात है। बस लोगों के पास होती थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो आप अपने घर में लेकर बैठ गए, आप इस्तेमाल करने लग गए, अगला शर्म के मारे मांग भी नहीं रहा। फिर इसी तरह कोई और छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि यहाँ इंसाफ की बात है ना, तो सही मुस्लिम की एक हदीस है 4825 नंबर की, आपने फरमाया कि इंसाफ करने वाले रहमान अज़्ज़ वजल के दाई जानिब और अल्लाह के नज़दीक नूर के मिम्बरों पर होंगे और अल्लाह के दोनों हाथ दाएँ हैं, ये वो लोग होंगे जो अपनी रियाया और घर वालों में अदल व इंसाफ करते थे। अल्लाह ताला हमें अदल और इंसाफ वाला बना दे। अब आगे सूरत निसा का जो हिस्सा ना, इसका बुनियादी टॉपिक अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल। आप देख रहे हैं पूरी सूरत आपको साथ साथ लेके चल रही है, माशरती अहकामात हैं और साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने की दावत है। क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। इताअत किसको कहते हैं, खुशी से बात मानना, तो उनके लफ्ज़ में ये बात छुपी हुई है। आप देखिए एक काम है कोई करता है, रोते धोते माँ ने पानी मांगा, अच्छा लाती हूँ आ गई, फिर जाके गिलास वहाँ पटखा, माँ को खुशी होगी, ओके कि बेटा लग नहीं रहा कि आप खुशी से दे रही हैं। एक यह कि आप कोई मांगे भी ना और अपनी खुशी से बड़ी खूबसूरत गिलास में पानी डालें, नीचे प्लेट रखें, नैपकिन रखें, बड़ी इज्जत से पेश करें। सच बताइए ये पानी माँ को ज़्यादा खुशी देगा या वो उछलता हुआ शरबत का गिलास जो अपने माँ को दिया। बस ये सोचें, मानना तो है। आप और मैं ज़रा इस वक्त ज़रा थोड़ी सी एक एक्टिविटी करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करें। पूरी शरीयत कुरान पे ज़िंदगी पे छाई हुई, अल कुरान हयाती, हाय सूद भी नहीं, हाय पर्दा, हाय नमाज, हाय रोज़ा, हाय मैं मर गई, हज भी करना है अभी उमरा नहीं किया, दिमाग फट रहा है, जहन जल रहा है, ये आज शादी की पाबंदी है, अब उस लड़के से बात नहीं करनी, ये क्या मजाक है ये। अब आप क्या करें, स्ट्रेस हो रहे हैं ना आपके सारे औसाब और मसल्स ऐसे स्ट्रेच हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, मुसीबत है, हेट इस्लाम, क्या मुश्किल है, क्या अम्मी को तो आदत है बोलने की, अब्बू तो इतने रिजिड हो गए और ये दर्स वाले बस इनके पास जाना शुरू किया, ये सख्त हो गए। अब ये आपकी एक फीलिंग थी, टेक अप डीप ब्रेथ, रिलैक्स, काम डाउन, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, इसको अपनी खुशी बना लें, अपना टेस्ट बदल लें, चॉइस चेंज कर लें। देखिए ना वो कहते इंग्लिश में कहते हैं कि इफ़ यू कैंट बीट देम ज्वाइन देम, अगर आप किसी चीज़ से मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर ज्वाइन कर लीजिए। लोग गुनाह के लिए ये कहते हैं, मैं आपको नेकियों के लिए कहती हूँ, यहाँ बैठ के दुआ करें मैं और आप, अल्लाह जो तुझे पसंद मुझे भी पसंद हो, ये ज़िंदगी का भी असूल है। शादी के ताल्लुक से बातें चल रही हैं ना पीछे, आगे भी आएंगी इंशाल्लाह। शादी हुई, लड़के के घर में लड़की गई, चले लड़का लड़की के घर में चला गया, एक ही बात है, बातें नहीं मिल रही, हाय हाय ऐसा है, मैं तो ये समझी थी इसकी अम्मा ऐसी लगती थी वैसी निकली, बहन देखो कैसी है, घर कैसा, इतना काम करना पड़ा, अब रो रहे हैं धो रहे हैं तड़प रहे हैं तड़प रहे हैं। लेट इट स्टॉप, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, आप अपने आप को ढाल लें, सब नहीं आपके लिए बदलेंगे, आप बदल दीजिए। शौहर कहते तुम बदलो, बीवी कहती है तुम बदलो, तुम में कोई भी नहीं बदलता, वो दोनों बदल जाते हैं, उसको बाद में कोई और मिलेगा, उसको कोई और मिलेगी। तो ज़िंदगी का असूल यही है, अल्लाह के मामलों में अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, खुशी मना। और ये अकेले में अल्लाह ताला से बातें किया करें, अल्लाह जी आपको क्या क्या पसंद है। एक टॉपिक है अल्लाह ताला किन से मोहब्बत करता है, अल्लाह किन किन से मोहब्बत करता है, तो आप ढूंढिए वो चीज़ें कि अल्लाह को क्या पसंद है। तो आज से शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, 1%, 2%, 3%, मैंने वो अपनी ज़िंदगी में लाना है जो मेरे रब को पसंद है, और जो मेरे रब को नहीं पसंद वो मैंने छोड़ देना है। कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल को तैयार करने की देर है। इसीलिए आगे फरमाया इताअत करो अल्लाह की और रसूल की और इन लोगों की जो तुम में से साहिब अमर हों। इसको हाईलाइट कीजिएगा, उलिल अम्र, ये दो तरह के होते हैं, एक मजहबी रहनुमा और एक दुनियावी रहनुमा। दुनियावी में इसमें हुक्मरानों से लेकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े तक आते हैं। इवन आप जहाज़ में बैठते हैं और वो कहते हैं कि सीट पर ना बैठें, आप सीट बेल्ट बांध लें, आप खड़े हो जाएँ, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त वो आपके उलिल अम्र है। किसी भी इदारे किसी के रूल को मानना इसमें आएगा, हुकूमत को मानना उसमें आएगा। लेकिन दूसरे उलूल अमर कौन से होते हैं, रिलीजियस लीडर्स, जिनको आप मौलवी हजरात कहेंगे, उलमाए कराम कहेंगे, तो उनकी बात भी माननी है, लेकिन उनकी बात मशरूत है। किस बात के? फ़ाइन तनाज़ा तुम फ़ी शयन, फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में निज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, अब क्या करो? फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फेर दो। फिर वापस आते हैं इसी बात पे, दुनियावी मामलात में हर वो बात मानिए बड़ों की जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से ना टकराती हो, और दीन के नाम पे उलमाए कराम और मज़हब सिखाने वालों की हर उस बात को ले लीजिए जो अल्लाह और उसके रसूल की बात के अंडर हो। ये है कुरान की दावत। कुरान और हदीस से रेफरेंस ले लीजिए और आगे बाकी बातों को मानते जाइए। ये कब होगा? इन कुंतुम तूमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला, अगर तुम वाकई अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो, यही एक सही तरीक़ेकार है और इंजाम के अतबार से भी बेहतर है। फ्रिक्शन छोड़ दो, आखिरत में अल्लाह के सामने खड़े होना है ना, आज दुनिया में ख़ुद को वहाँ खड़ा कर लो। खिंचादानी ख़त्म, झगड़े ख़त्म, रेजिस्टेंस ख़त्म करो। 4 दिन की ज़िंदगी है, इसको इंजॉय करके जाओ। खुशी से उसकी बात मानो ताकि कल वो तुम्हारा खुशी से इस्तकबाल कर सके। अपनी ज़िंदगी के स्टाइल को थोड़ा सा बस चेंज कर लो। ए नबी, तुमने देखा नहीं इन लोगों को जो दावा तो ये करते हैं कि हम ईमान लाए हैं, इस किताब पर जो आपकी तरफ नाजिल की गई और इन किताबों पर जो आपसे पहले नाजिल की गई थी, मगर चाहते ये हैं कि अपने मामलात का फ़ैसला करने के लिए तागूत की तरफ रजू करें। हाईलाइट करें कि ये आज मेरे आपकी बात तो नहीं। कलमा क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन मामले, डीलिंग, ज़िंदगी गुजारने के तरीके तागूत की तरफ, और तागूत के हर वो ताकत और कुव्वत जो आपको अल्लाह और उसके रसूल से दूर करे। हालांकि इनको तागूत से कुफर करने का हुक्म दिया गया था, शैतान इन्हें भटका कर आहे रास से बहुत दूर ले जाना चाहता है, और जब इनसे कहा जाता है आओ इस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है और आओ रसूल की तरफ, तो इन मुनाफिकों को तुम देखते हो जो तुम्हारी तरफ आने से कुतराते हैं। देखिए, ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जा रहा है इन आयात में, जो डे टू डे लाइफ में अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़ों पर नहीं आते। ज़रा सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, हज उमरा करने मक्का जाते हैं, मदीना में जाने का शौक़ बहुत है, इनके ज़ोम में 40 नमाज़ें ना पढ़ी तो हज कबूल नहीं, लेकिन ज़िंदगी के किबले, शादियों के किबले, खुशियों में किसको मानते हैं? फिर कहते इट्स माई लाइफ, इट्स माई स्टाइल। नहीं, पूरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की खुशी की बनेगी तो इंशाल्लाह सच्ची खुशियाँ मिलेंगी। तो क्या आज कुतराते तो नहीं हैं हम? कहते नहीं छोड़ो, ज़्यादा सवाल पूछे ना तो अमल करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ज़्यादा सवाल तो बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए, सच है, लेकिन कम अज़ कम बेसिक कुरान को तो समझना चाहिए। आप किसी जगह भी कुरान खानी के नाम पे दावत दें, जो हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर सी टर्म है ना, मैंने देखे 50-60 औरतें ऐसी जमा हो जाती हैं बेचारी, नोन है ना, आप सब गए, एक एक सपारा पढ़ा, फिर कहा अभी थोड़े रह गए बहन तुम पढ़ दो, कहती थक गई हूँ, कहती अच्छा चलो ऐसा करो एक सफ़ा तुम पढ़ो तो दूसरा मैं पढ़ती हूँ, अच्छा जी आप ये कर लेते हैं, अब उतने में खाना लगा, फ्रूट आना शुरू हो गया, आप परेशान है क्या हो गया है, तो फिर क्या कहते हैं अच्छा चलो ये मैं घर जा के पढ़ लूँगी, अच्छा जी आपने अच्छा अच्छा चलो जल्दी कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए ये पढ़ना और ये जो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, मैं कह सकती हूँ कि 95% सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहे हैं। आप पूरा टाइम रिकॉर्डिंग का बाद में जाके देखें और तर्जमा निकाल दें तो बीच में मेरी अपनी एक जो आपको थोड़ी सी वजाहत दे रही हूँ, ये 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी अभी तक जो हमने बात की उसमें से, ये मुश्किल लगता है। हालांकि आपको गाइडलाइन मिल रही है कि नहीं, और मेरा ईमान है कि मैं एक लफ्ज़ भी खुद ना बोलूँ ना, सिर्फ अल्लाह के कुरान के तर्जमे का हक अदा कर दूँ तो आपके लिए वो भी काफ़ी है। मज़ा आए ना आए, बोर हो कुछ भी हो, हम मज़ा लेने तो आए भी नहीं, बोर हो ना हो हम हिदायत लेने आए। तो इस तरह पढ़ने से कुतराना कि नहीं, पढ़ना मुश्किल है, हाँ इसकी जगह नाते पढ़ लेते हैं, इसकी जगह हम कुछ और करते हैं, वो भी कीजिए, लेकिन अल्लाह की बात को सुनिए तो सही। और मैं सोचती हूँ कि रमज़ान इसका इतना खूबसूरत मौका होता है कि जो हमें बाकी चीज़ों से आज़ाद करा देता है। अब होता क्या है, जब हम अल्लाह और उसके रसूल से गाइडलाइन लेने से कतराते हैं ना, तो फिर कोई ना कोई मुश्किल आती है, उसका जिक्र है। फ़कीफ़ इज़ा साबत हो मुसीबत तुम बिमा क़दम तईदीम सुम जाऊ का यहलिफोन। फिर इस वक्त क्या होता है जब इनके पास अपने हाथों की लाई हुई मुसीबत इन पर आन पड़ती है, इस वक्त वो तुम्हारे पास कस्में खाते हुए आते हैं। और क्या कहते हैं इस जुमले को, ज़रा आप सब हाईलाइट कीजिएगा अरबी में से, इन अरदना इल्ला एहसानम व तौफीका। खुदा की कसम हम तो सिर्फ भलाई चाहते थे और हमारी तो नीयत ये थी कि फरीक़ैन में किसी तरह मवाफ़कत हो जाए। आज के मुसलमान यही जुमला बोलते हैं। इंग्लिश में बोलूँगी, साथियों को समझ आ जाएगा, नोश्क में आप खुद तर्जमा कर लीजिएगा। कहते हैं टू असिमिलेट आवर सेल्फ विद द सोसाइटी। हमारे बच्चे आइसोलेटेड फील करते हैं, फिर देखो ना सब ऐसे हैं तो अब मैं निकाब में चली जाऊं, और सब ऐसी शादियां करते हैं धूम धड़क के कि मैं अपने बच्चे की शादी मस्जिद मदरसे में कर दूं। मवाफ़कत, वो क्या चाहते हैं, हम नून में नुक्ता नहीं बनना चाहते। ये बिल्कुल यही जुमला है, नून में नुक्ता नहीं बनना चाहते जी, हम डेढ़ इंच की मस्जिद नहीं बना रहे। भाई सब गलत कर रहे हैं तो फिर आप क्यों कर रहे, क्या करें ना, फिर सब में मिल के भी तो रहना है। ये बात अल्लाह के नबी के दौर के लोग कहते थे। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह जानता है जो कुछ इनके दिलों में, ये अपनी खुशी से कर रहे हैं, कौन इनको मजबूर करे। इनसे तारुस मत करो, इनको समझाओ और ऐसी नसीहत करो जो इनके दिलों में उतर जाए। ये है कौलन बलीगा, दिल के अंदर बात उतर जाए। देखिए नरम बारिश होती है ना, ये मिट्टी में जाती है, पानी अंदर जाता है ना तो फसलें उगती हैं। नसीहत बड़ी नरम आवाज़ से करनी चाहिए। आपको अपने बच्चों को जब डांटना हो ना, तो जिस टोन में आप आमतौर पर बोलती हैं ना, उससे भी ज़रा वॉल्यूम लो कर लें। वो परेशान होगा, अम्मी आहिस्ता क्यों बोल रही हैं, फिर उसका दिमाग चलेगा, फिर वो सोचेगा। हम क्या करते हैं, आम टोन से कोई 3-4 दर्जे वॉल्यूम ऊंचा करते हैं, वो कानों से ऊपर इतनी तेज़। अब मैं बोल रही हूँ और वॉल्यूम पीछे से तेज़ किया जाए तो कान में आवाज़ फटेगी ना। तो कॉलम बली आहिस्ता नरम दलाइल वाली दर्द वाली बात पैदा करे। आवाज़ में दर्द ही पैदा तब होते, इस पर एक दर्स भी है बहुत अच्छा, मुझे नहीं पता कब दिया था, कि बातों में असर कैसे, बातों में तासीर कैसे। तो उसमें एक वजह अखलास, दर्दमंदी पैदा करें, मोहब्बत करें, अपनी कई भी बात पे अमल करें। फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे दिलों में लोगों के बात डालेगा। फरमाए इन्हें बताओ कि हमने जो रसूल भी भेजा इसलिए भेजा कि इज़्ज़त खुदाबंदी के बिना इसकी इताअत की जाए। ज़रा इस जुमले पर गौर तो कीजिए, कोई रसूल क्यों आता है। वमर सलना मेर रसूल, और हमने नहीं भेजा किसी रसूल को मगर इल्ला लियुता बिस्मिल्लाह। क्यों आते हैं, ताकि आप उनको फूलों के गुलदस्ते पेश करें, आप उनके आने पे खड़े हो जाएं, आप उनका मिलाद मनाएं, आप उनको खिराज तहसीन पेश करें। नहीं, वो अलग बातें, वो तो आपकी मोहब्बत का इजहार है ना। असल मकसद नबी के आने का क्या है, लियुता बिस्मिल्लाह, ताकि उनकी इताअत की जाए, उनकी बात को दिल से माना जाए। और देखिए सूरत निसा के दौरान ही नियत कर लीजिए, मैं और आप अतीउल्लाह और अती रसूल। इसके बाद ये मौज़ू आपको पता है कहाँ जाके आना है, सूरत नूर में। सूरत निसा और सूरत नून दोनों नून है, अतीउल्लाह व अती रसूल। मैं महसूस कर रही हूँ हर दूसरे तीसरे जुमले में लफ्ज़ इताअत कहीं ना कहीं आ रहा है। तो खुशी से मानिए, अल कुरान हयाती, ये मेरी ज़िंदगी की किताब बनेगी कब, जब मैं खुशी से मानूंगी, या फिर रो रो के ज़िंदगी गुजरेगी। तो नबी की आमद का मकसद उनको फूल पेश करना नहीं, बल्कि उनकी इताअत की जाए। अगर उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया होता कि जब ये अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठते थे तो तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते और रसूल भी इनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त करता, तो यकीनन अल्लाह को बख्शने वाला और रहम करने वाला पाते। नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे खूबसूरत आयत है ये सूरत निसा की, पूरे कुरान में इस मिजाज की आयत कोई नहीं है कि जिसमें आप देखिए ज़रा अल्लाह के नबी का रब कहा गया अल्लाह को, फला व रब्बी का। उलमाए कराम इस आयत की इतनी खूबसूरती बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह अपने नबी की कसम खा रहा है, यानी अल्लाह खुद रसूल की कसम खा रहा है, ये मतलब है। फला व रब्बी कला यू मेनू नहकीमू कफ़ी मशरब नहम। नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तलाफात में ये तुमको फ़ैसला करने वाला ना मान जाएं। फिर जो कुछ तुम फैसला करो इस पर अपने दिलों में कोई तंगी भी महसूस ना करें, बल्कि दिल की खुशी से तस्लीम कर लें। बात समझ गए, आज लगता है यहाँ से उठने से पहले अल्लाह ताला आपको मनवाना चाहते हैं कि जो हुक्म दीन का मानो दिल की खुशी से मानो, रोते धोते नहीं मानो, पांव पटकते हुए अमल नहीं करो, سر نہ پھوڑو، پیار سے جی اللہ، جی اللہ کے نبی، جو آپ کہیں گے، جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا۔ اور اللہ کو اتنے مشکل حکم تو نہیں دیتا؟ سچ بتائیے، کبھی ماں اپنے بچے کو مشکل بات کہتی ہے؟ 5 سال کے بچے کو آپ نے کبھی کہا کہ 10 کلو کا گھی کا ڈبہ اٹھا کے چلو؟ آپ یہ کہیں گے 1 کلو کا اپنا بیگ اٹھا لو ساتھ، رائٹ؟ یہی آگے اللہ سکھا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنے مشکل حکم تو نہیں دیے کہ تم رو رہے ہو۔ اگر ہم نے ان کو حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یعنی نہیں دیا، اتنے مشکل حکم تو اللہ نے دیے بھی نہیں، اور اگر دیتے تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ تو پھر آسان سی شریعت کو مان جاؤ، خوبصورت سے قرآن کو مان جاؤ۔ حالانکہ جو نصیحت ان کو کی جا رہی ہے، اس پر اگر یہ عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ یہ بھی ایک بات ہے، ثابت قدمی دین میں آتی ہی تب ہے جب آپ پہلی سنی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہتے ذرا سارا قرآن سن لوں پھر عمل بعد میں کروں گی، تو وہ عمل تو میں نے نہیں کبھی آتا دیکھا۔ یقین کریں، آپ میں سے چند لوگوں کو وہی نصیحت کروں جو ہمیشہ ہی قرآن کے لیے آنے والوں کو کرتی ہوں، اگر آپ میں سے کوئی پہلی دفعہ قرآن سن رہا ہے اس وقت، جو بات سنیں فوراً عمل کی نیت کریں، لکھ لیں اپنے نوٹس میں آج ہی سے، ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ ورنہ پتہ کیا ہوگا، آج دل ڈرے ہوئے ہیں یا آج دل میں رغبت ہے اچھے کام کی، اگلی دفعہ سنیں گے تو دل تھوڑا سا سخت ہوگا، پھر اگلی دفعہ اور سخت، اور تیسری دفعہ تب چلتے پھرتے سنیں گے۔ آپ نے کوئی پورا قرآن سننے بیٹھ کے کبھی؟ پھر کانوں سے ٹکراتی ہیں باتیں، دل سخت ہوتے ہیں، واللہ دل سخت ہوتے ہیں، مانے نہ مانے آپ، قرآن کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو 20 بار سنا ہوا ہے، تو دل کی سختی سے بچے۔ قرآن چل رہا اور آپ باتیں کر رہے ہوں، قرآن چل رہا اور آپ کسی اور ہی غم میں گھومیں، یہ دل کو سخت کرے گا۔ تو بارش پڑتی ہے نا مٹی پہ تو خوشبو آتی ہے، اس طرح ننھے ننھے دلوں پہ قرآن کی بارش اگر پڑ رہی ہے اور کوئی شوق ابھر رہا نا کہ اللہ میں بھی تو کچھ کر کے جاؤں، میں بھی تو تیری پسندیدہ بندی بنوں، تو ابھی عمل کر لیں، ورنہ بعد میں پھر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اور بیسٹ پلیس ٹو میک اینی ڈیسیژن، ابھی ناؤ، اسی جگہ، یہاں پگھلے ہوتے ہیں موم بتی کی طرح نرم ہوئے میں، جس پوسچر میں آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، اندر اگر ایگو ہے اور بڑی پانے دیکھتے ہیں کیا قرآن کہتا ہے، چلو سن کے آتے ہیں، تو اندر سے جم جائیں گے، اور آنکھیں روئے نہ روئے، دل روئے تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ سوز اور گداس آپ کے اندر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثابت قدم کرتا میں ان کو، اور اگر یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عطا کرتے اور سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ کا علم کافی ہے۔ یہ ریفرنس نوٹ کر لیں، سورۃ فاتحہ میں آپ اور میں دعا کیا کرتے ہیں، الذین انعمت علیہم، انعام والے لوگ کون ہیں، اس آیت میں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہی لگا دے، انعام والے بن کے اس دنیا سے جائیں گے تو مزہ آئے گا۔ ورنہ یاد رکھیے کہ عام لوگ تو سارے ہی ہوتے ہیں زندگی میں، آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ درمیانے، اور کچھ تو بالکل ہی کناروں پہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے آسانی کرے۔